हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय एक श्लोक क्रमांक 28। अर्जुन उवाच दृष्टवेमं स्वजनं कृष्णा युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशिष्यति। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तात्पर्य, यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि भक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। एक अभक्त भगवान के संपर्क में नहीं होता है, इस कारण भगवान के गुण ये जो सद्गुण देवताओं के होते हैं, ये भगवान के भी होते हैं, वो एक अभक्त में नहीं आ पाते हैं। इसके बारे में आगे प्रभुपाद जी चर्चा करेंगे तब मैं बताऊंगा। और अर्जुन का ये गुण हम यहाँ देख रहे हैं कि वो अनावश्यक रूप से हिंसा को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते थे। अनावश्यक क्यों? क्योंकि वो तो पांच गांव में संतुष्ट थे। एक्चुअली वो नहीं, पूरे पांच पांडव एक एक गांव लेकर के पांच गांव पे को स्वीकार करने करके उस पे राज्य करने के लिए संतुष्ट थे। ये एक भगवान के भक्त का लक्षण होता है कि इस जगत की वस्तुओं से उसको वैराग्य होता है, उस जगत में आसक्ति नहीं होती है, आसक्ति भगवान में होती है। तो इसी कारण से यहाँ पे अर्जुन इस अपने ईश्वरीय गुणों के कारण, कृपा के कारण, दयालुता के कारण उनका हृदय जो है वो कांपने लगा कि मुझे अपने ही सज्जनों का युद्ध करना पड़ेगा, सही से युद्ध करना पड़ेगा और उनको मारना पड़ेगा। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह इनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। इस जगत में प्रायः हम सब लोग जिनसे अपना संबंध अनुभव करते हैं उनके प्रति तो भावनाएं होती हैं, लेकिन जिनके प्रति हमारा कोई संबंध हम अनुभव नहीं करते हैं उनके प्रति हमारी कोई भावना नहीं होती। हम लोग कितने सारी न्यूज़पेपर में सुनते हैं या देखते हैं, कितने लोग मर गए, फलाने लोग मर गए गुजरात में, हाँ दुख की बात है, लेकिन अगर उनमें से कोई एक व्यक्ति भी अपना हो तो फिर व्यक्ति का जो रिएक्शन है उसके प्रति वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो यहाँ जो अर्जुन है, अर्जुन केवल अपने ही पक्ष के लोगों की मृत्यु के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो सामने वाले के पक्ष के जो सैनिक हैं उनके बारे में भी सोच रहे हैं, केवल अपने स्वजनों के बारे में नहीं सोच रहे बल्कि अन्य सैनिकों के बारे में भी सोच रहे हैं। तो ये उनकी उदारता है। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब अर्जुन के सगी संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। आश्चर्य क्यों हुआ? मान लीजिए कोई हमारा बहुत बचपन का मित्र है और वो 100-200 रुपए के लिए हमसे मित्रता तोड़ ले, तो हमें आश्चर्य होगा ना कि जीवन भर हम लोग साथ में खाए रहे, इतनी खूब देर बातें भी करी और 100-200 रुपए के लिए तुम मित्रता तोड़ ले रहे हो और युद्ध करने के लिए आ गए हो, शत्रु बन गए हो। तो अर्जुन को ये बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, एक शौक लगा कि इतना जितने भी बंधु बांधव हैं वो सब युद्ध करने के लिए आ गए। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे और ये है कि धृतराष्ट्र के अगर लड़के युद्ध करने के लिए आते तो इतनी भावना अर्जुन के हृदय में नहीं आती शायद, क्योंकि उन्होंने बहुत अपराध किए थे, वो पांडवों के द्वेषी थे। लेकिन विपक्ष में बहुत सारे लोग थे जो पांडवों के द्वेषी नहीं थे, जैसे मामा शाल्य जो कि माद्री, जो कि उनकी नकुल और सहदेव की माँ थी, उनके भाई थे और एक्चुअली वो युद्ध पांडवों की तरफ से करने के लिए आए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो दुर्योधन की तरफ से युद्ध कर रहे थे। ऐसे भूरिश्रवा, कृतवर्मा, ये सब मित्र थे पांडवों के। तो ये देख करके उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि दुर्योधन युद्ध करे, ये तो समझ में आता है, लेकिन ये सारे लोग भी अब हमारे हमसे हमारे विपक्ष में युद्ध कर रहे हैं किसके लिए। अर्जुन का भावना यही थी कि ये मेरी इंद्र तृप्ति के लिए या हम पांडवों की इंद्र तृप्ति के लिए ऐसा हो रहा है, तो इस कारण से उनको बहुत आश्चर्य हो रहा था। थोड़े से भोग के लिए इस प्रकार से दूसरे को मार देना, ये उनको बड़ा आश्चर्यजनक लगा। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अर्जुन दुर्बल कतई नहीं थे, मैंने पहले भी समझाया था। विरहनला के रूप में उन्होंने सारे कुरुओं से युद्ध किया था, और जब विराट नरेश के ऊपर कौरवों ने की सेना ने चढ़ाई कर दी थी, तो ऐसा नहीं है कि वो कायर हैं, लेकिन भक्त होने के कारण व्यक्ति का हृदय कोमल हो ही जाता है भक्ति के प्रभाव से। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते करते काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य पूरी तरह से नष्ट हो जाता है एक साधक के हृदय में भी, और वो किसी भी जीव जंतु का की नाहक हिंसा नहीं करना चाहते हैं। तो भगवान के पार्षद अर्जुन का हृदय कितना कोमल होगा, ये तो अंदाजा ही लगाया जा सकता है। अतः कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुराहा हराव भक्तस्य कुतु महद गुणा मनोरथेना सति धावतो बहिः। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। शिला भक्ति रसामृत सिंधु में भी इस बात को बताया गया है, समझाया गया श्लोक, और भागवत का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि जिस व्यक्ति की भगवान श्री कृष्ण के प्रति अकिंचन भक्ति होती है, शुद्ध भक्त होता है, वो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, तो भगवत कृपा से भगवान के सारे गुण उसके हृदय में आ जाते हैं। आचार्य शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि देवताओं के गुण तो देवताओं के उपासकों में भी आ जाते हैं। जैसे सत्राजित नाम का एक व्यक्ति था जो सूर्यदेव का उपासक था, और उनकी कृपा से उसको एक मणि प्राप्त हुई जिसको धारण करके वह सूर्य के समान ही चमकने लगा था। तो जो देवता के उपासक हैं उनमें भी देवताओं के गुण आ जाते हैं। तो भगवान की सेवा करने वाले के अंदर केवल देवताओं के गुण आए ऐसा नहीं है, देवताओं के गुण तो आते ही हैं, साथ साथ भगवान के गुण भी आ जाते हैं भक्त के हृदय में, निर्गुण हो जाते हैं भक्त। लेकिन जो अभक्त हैं वो बाह्य दृष्टि से अपने कर्मों पूर्व कर्मानुसार कुछ गुणों को धारण किए हुए लग सकते हैं, बड़े आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन जब तक उनकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा पड़ती है तभी तक। जैसे कोई एयर होस्टेस है, वो बहुत नम्रता से बहुत प्रेम से बर्ताव करती हैं, लेकिन तभी तक जब तक उनको सैलरी मिलती है। प्रायः इस जगत में हर व्यक्ति अगर हमसे मीठा भी बोल रहा है तो उसका उद्देश्य यही होता है कि कैसे मैं ऐसे इंद्रिय तृप्ति को प्राप्त कर सकूं। और यही बात रिश्तेदारों में और सगे संबंधियों में भी होती है। लेकिन जो भगवान का भक्त है, सच्चा भक्त है, उसके प्रति कोई अपराध भी करता है फिर भी उसकी मंगल कामना करते हैं, जैसे हम यहाँ पे अर्जुन के केस में देख रहे हैं। जैसे भगवान के प्रति कोई अपराध करता है फिर भी भगवान उसकी मंगल कामना करते हैं, इसी प्रकार से अर्जुन भी कौरवों की और बाकी सभी लोगों की मंगल कामना करते हुए इस भावना से प्रभावित हो जा रहे हैं। ये हृदय की कोमलता है, ये समझ में आना चाहिए, वो कायर नहीं है। टेक्स्ट 29। वेपतुश्च शरीरे मे रोम हर्षश्च जायते गांडिवं संस्रते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय यह भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। ये समझ में आना चाहिए, जब आध्यात्मिक उन्माद, दिव्य उन्माद एक भक्त के हृदय में होता है तो वो दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं, कोई भय का अनुभव नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो अर्जुन है ये दिव्य उन्माद के कारण नहीं बल्कि भौतिक भावनाओं के कारण प्रभावित हो रहे हैं। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता है। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है, वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य हैं। देहात्म बुद्धि का मतलब अपने को देह माना और देह से संबंधित व्यक्तियों को अपना मानना और देह से संबंधित वस्तुओं को अपना मानना। तो यहाँ पे अर्जुन अपना कर्तव्य नहीं कर पाने में अपना कर्तव्य को कर पाने में असमर्थ हुए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भौतिक आसक्ति भी है अपने परिवार के जनों के प्रति। इस समय और आगे इस पूरे अध्याय में वो ये नहीं सोच रहे, इस समय ये भगवान के अरेंजमेंट से है, समझ में आना चाहिए। अर्जुन कोई बधात्मा नहीं है, लेकिन भगवान के आयोजन से ऐसा हो रहा है कि वो भगवान की प्रसन्नता के बारे में नहीं सोच रहे हैं, खाली ये सोच रहे हैं कि मेरे सगे संबंधी को कैसे सुख मिलेगा और इनको इनका कैसा इनका सुख कैसे मिलेगा और मेरे को सुख कैसे मिलेगा। ये एक भौतिक बद्धात्मा का कारण है। इस प्रकार से उनको करना, भौतिक बद्धात्मा का लक्षण है कि वह हमेशा अपने इंद्र तृप्ति के बारे में सोचती है। इस समय अर्जुन भगवान के आयोजन से इस प्रकार से सोच रहे हैं। अर्जुन देहात्म बुद्धि से मुक्त है, वो हमेशा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, लेकिन कभी कभी उनके हृदय में, कभी कभी भी नहीं कहना चाहिए, इस समय अज्ञान उत्पन्न जो हो रहा है वो भगवान जनित है, भगवान के द्वारा है, माया के द्वारा नहीं है। ऐसा लग जरूर रहा है वो कि माया के द्वारा है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जब कोई दिव्य उन्माद में भक्त रोते हैं तो उनके जो आंसू होते हैं वो ठंडे होते हैं, और जबकि जो कोई भौतिक परिस्थिति के कारण, हम दुख के कारण रोते हैं तो वो आंसू जो होते हैं वो गर्म होते हैं। तो उससे हम समझ सकते हैं, नशा शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उससे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। मोह का अनुभव हम वर्तमान काल में करते हैं। मोह का अर्थ है अपने को भूल जाना, अपनी स्थिति को पूरी तरह से भूल जाना। तो यहाँ पे मन की दुर्बलता क्या है? भौतिक भोगों में आसक्ति। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, हम सुनते हैं और हम, और ऐसा लगता भी है कि हम जानते भी हैं, लेकिन फिर भी भौतिक आसक्ति रहती है, भोगों में आसक्ति रहती है, और इस कारण से व्यक्ति अपने को पूरी तरह से भूल जाता है कि वो पहले क्या था, वास्तविक रूप से है क्या, उसका कर्तव्य क्या है। तो यहीं पे हम देख रहे हैं, तो हम यहाँ देखते हैं कि भौतिक आसक्ति के कारण उनको आत्मविस्मृति हो रही है। इसी कारण से वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था इस प्रकार से की गई है कि अगर भौतिक रूप से आसक्त भी है व्यक्ति, फिर भी धीरे धीरे अपनी आसक्ति को कम करता है। इसीलिए वर्णाश्रम में केवल 25 साल ही गृहस्थ आश्रम में रहने के लिए बोला गया है, 50 साल के बाद बोला गया है कि आप घर बार को त्याग दें। क्यों? क्या घर में भगवान नहीं है? घर में भगवान हैं, लेकिन आसक्ति भगवान में हमारी ना होने के कारण हमारा घर में, हमारा जो ध्यान है वो घर के अन्य वस्तुओं में अधिक जाएगा, ना कि भगवान से, भगवान में जाएगा। नहीं तो देखिए ना, स्कूल में बच्चे जो हैं, जब कॉलेज में जाते हैं, जब आप हॉस्टल में रहते हैं, तो सबका अनुभव होता है कि वो पढ़ाई अच्छी तरह से कर पाते हैं। घर में रहने के कारण व्यक्ति पढ़ नहीं पाता ठीक प्रकार से। पहले समय में भी इसीलिए गुरुकुल में बच्चों को भेजा जाता था ताकि वो एकाग्र मन से घर परिवार के जो झगड़े हैं, झंझट है, उससे निवृत्त होकर के शिक्षा प्राप्त करें। तो खैर ये सब एक बात आ रही है यहाँ पे और इंटरेस्टिंग, शिक्षा प्राप्त करने के संबंध में, कि शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य होता है चरित्र का निर्माण। जब कोई व्यक्ति हमसे मिलता है तो वो हमारी डिग्रियाँ नहीं पूछता है, और मान लीजिए पूछ भी ले, लेकिन उससे प्रभावित तभी होगा जब वो देखेगा कि हमारा चरित्र बहुत अच्छा है। और चरित्र निर्माण होता कैसे है, हमने 28वें श्लोक में देखा था, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है व्यक्ति तो स्वभाव ही उसका बदल जाता है, उसका पूरा चरित्र परिवर्तित हो जाता है। इस पर बहुत सारी कथाएं हैं लेकिन वो अभी मैं नहीं बता रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जो बहुत ख़राब व्यक्ति थे, बहुत ही गर्हित जीवन जी रहे थे, वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके एक महान साधु बन गए, महान भक्त बन गए। तो ये जो मोह है वो हम वर्तमान में इसलिए अनुभव कर रहे हैं क्योंकि भौतिक वस्तुओं में आसक्ति है। तो अब क्या किया जाए, क्या भौतिक वस्तुओं को त्याग दिया जाए, ये भी हमारे लिए संभव तुरंत नहीं है। भौतिक वस्तुओं को त्यागने के बजाय हमें सीखना चाहिए कि उनका उपयोग हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए कैसे करते हैं, और इसके द्वारा धीरे धीरे हमारी आसक्ति कम हो जाती है। और साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि जैसे जैसे हमारा ज्ञान नष्ट होता है, वैसे वैसे हम समझने लगते हैं कि जगत में कोई भी भौतिक वस्तु है तो वो अवश्यम भावी रूप से नष्ट ही होगी, चाहे वो हमारा शरीर हो, चाहे हमारे शरीर से संबंधित व्यक्ति हो, और चाहे हमारे शरीर से संबंधित वस्तुएं हों। तो स्वभावतः हम इनमें आसक्त होना कम कर देते हैं, और भगवान से अपने संबंध की शाश्वतता को विचार करके भगवान से संबंध के बढ़ाने का या जागृत करने पर हमारा फोकस बढ़ता चला जाता है। भयम द्वितीया भी निवेश तस्यात्, भयम द्वितीया, ये जगत भगवान की शक्ति है। तो भय का कारण क्या है, भय का कारण ये है कि ये ना समझ पाना कि भगवान इस जगत के मालिक हैं, भगवान इस जगत के भोक्ता हैं, और भगवान ही परम नियंता है। और हम इस प्रकार से सोचते हैं, और ये जगत डिजाइन भी इस प्रकार से किया गया है, तो ये हमारी बद्धात्मा होने का लक्षण है। और हम इस प्रकार से सोचते हैं तो हमारे हृदय में भय उत्पन्न हो जाता है। इससे पहले भी मैंने समझाया था कि मैं एक प्रभु जी के अंडर में सेवा करता हूँ, तो अगर उनके अंतर्गत में सेवा करता हूँ तो कोई भय नहीं है, लेकिन अगर मैं उनसे कंपटीशन करने लग जाऊँ, सोचने लग जाऊँ कैसे मैं उनको हटाकर उनकी पदवी को प्राप्त करूँगा, जैसे ही कंपटीशन आएगा वैसे ही भय उत्पन्न होने लग जाएगा। तो हो सकता है इस जगत में मैं किसी पर विजय प्राप्त कर लूँ, लेकिन भगवान पर विजय हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो जो व्यक्ति भगवान पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करेगा, उसको माया हमेशा भय के द्वारा ग्रसित करके रखेगी उसके हृदय में। और वो भय का कारण क्या होगा, अपने शरीर में मैं बुद्धि का अभिनिवेश, कि मैं ये शरीर हूँ, और जब शरीर नष्ट हो जाएगा तो मैं नष्ट हो जाऊँगा, ये शरीर से संबंधित वस्तुएँ नष्ट हो जाएंगी तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा, कुछ समय पहले भी कल परसों की बात है, तो एक व्यक्ति ने हमसे 500 रुपये बहुत अधिक ले लिए कुछ सामान खरीदने में। तो भक्त बड़े परेशान हो गए, और स्वाभाविक होना भी चाहिए, लेकिन फिर मैं उनको बोल रहा था कि देखिए क्या एक क्षण भी हम करोड़ों रुपए देकर के वापस ला सकते हैं? अब जिस व्यक्ति ने चीटिंग किया है वो तो पैसे देगा नहीं, और उस पर हम बार बार चर्चा करके अपने कितने क्षण, बहुमूल्य अमूल्य क्षण व्यर्थ कर रहे हैं। तो देखिए इस जगत में हम अपना समय कितना बर्बाद कर देते हैं, भोगों में या सोने में, ऐसे करते करते कितना समय बर्बाद करते हैं, कोई भी हमको उसमें लैमेंटेशन शोक नहीं होता है, जबकि होना चाहिए। और अगर थोड़ा सा भी पैसा चला जाता है तो व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है। तो ये हमारा सब अभिनिवेश के कारण है हमारे मन में। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी, वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। यानी कि अगर वो जीतते तो भी उनकी हार थी, अगर वो हारते तो हार ही थी ही। और ये भी सोचना चाहिए कि अर्जुन जान रहे हैं कि युद्ध में जरूरी नहीं है कि पांचों पांडव जीवित वापस आएं, हो सकता हो अर्जुन और कृष्ण केवल वही रह जाएं और बाकी सारे जो हैं उन सब की मृत्यु हो जाए। तो इस प्रकार की भावनाएं भी उनके हृदय में आ रही थी, ये भय था, इस कारण से उनका हृदय परेशान हो गया था। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ। जैसे कोई व्यक्ति को भूख न लगे, अगर किसी व्यक्ति को भूख नहीं लग रही है और उसको खाने के हॉल में बिठा दिया जाए या रेस्टोरेंट में लेके जाए, तो वह कहेगा कि मेरा टाइम खराब हो रहा है, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मुझे भूख तो लग नहीं रही है। रेलेवेंस नहीं लगती उसको। तो उसी प्रकार से जब उसने देखा, उनको लगा कि भौतिक रूप से मुझे कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, तो फिर से मुझे क्या फ़ायदा युद्ध करने का। जनरली ये कह सकते हैं हमेशा बद्ध आत्मा इसी प्रयोजन से कार्य करता है, मेरा क्या लाभ है, भगवान संतुष्ट होंगे या नहीं इसके बारे में नहीं सोचते। ये बात हमारे जप के ऊपर भी होती है। बहुत बार भक्त लोग बोलते हैं प्रभु जी जब तो सूखा लग रहा है, रूखा लग रहा है, तो मैं क्या क्यों जप करूं? नहीं, जब हम अपने शुद्धिकरण के लिए कर रहे हैं लेकिन साथ साथ भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। जितने भी यज्ञ हैं, जितने भी कर्म हैं जिनसे यज्ञ बनता है, उसमें भगवान बोल रहे हैं यज्ञ नाम जप यज्ञ, उसमें सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है जप यज्ञ। तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि इससे भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं, ना कि हमारी प्रसन्नता के लिए ऊपर होता है। तो ये हमको एक बद्ध आत्मा के रूप में इस बात को, अपने मन को जीतने का प्रयास करना चाहिए और नियमित रूप से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इससे परेशान नहीं होना चाहिए कि आज हमको कैसा लग रहा है या कल कैसा लग रहा है। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। और सिर्फ क्षमा कीजिएगा, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती, यानी भगवान को क्या प्रसन्न होता है रहेगा वो उस पर रुचि नहीं है। बहुत अद्भुत बात है कि प्रायः इस जगत में कोई भगवान के बारे में सुनना नहीं चाहता, और अगर भगवान के बारे में बोला जाए तो लोगों को लगता है ये तो समय की अपव्यय है। और इसी का लेकिन जो व्यक्ति भगवान के बारे में सुनना चालू कर देता है, जैसे कि ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत में बताते हैं, स्थाने सतः श्रुतिगताम तनुवांग मनोभी ये प्रायशो जित जितो प्यसि तैस्त्रिलोक्याम। जो व्यक्ति अपने घर में ही रह करके भगवान के बारे में प्रमाणिक रूप से सुनने का प्रयास करता है, तो वो व्यक्ति भगवान को जीत लेता है। देखिए ना, व्हाट्सएप के माध्यम से आप घर बैठे भगवद गीता के प्रवचन को सुन सकते हैं और इसके द्वारा भगवान को अतिशय प्रसन्न कर सकते हैं और भगवान को हम जीत सकते हैं, भगवान हमारे हृदय में ग्रस्त हो जाएंगे। स्वार्थ, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कृष्ण की इच्छा से ही अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। अर्जुन बद्धात्मा नहीं है, वो भगवान से भगवान के प्रेमी हैं और भगवान के प्रीति के लिए ही वो कार्य करते हैं। केवल भगवत इच्छा के कारण ऐसा उनका मोह उनके हृदय में उत्पन्न हो गया। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। नाते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु, कि मेरा जीवन का लक्ष्य या जीवन की सफलता है भगवान को संतुष्ट करना, ये बात बद्ध जीवों को पता नहीं, हम सबको पता नहीं है। और ये मालूम चलती है कैसे, जब भगवान के भक्तों के मुख से सुनते हैं, हम शास्त्रों से सुनते हैं। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न देख रहा है और स्वप्न में बहुत सारे कष्ट अनुभव कर रहा है, तो उसका सलूशन यही है कि वो सोना बंद करे और जागृत अवस्था में आ जाए तो मालूम चल जाएगा कि कोई कष्ट नहीं है। उसी प्रकार से हम लोग इस एक कंटिन्यूस जागृत स्वप्न में फंसे हुए हैं, जिसमें हम अपने भौतिक शरीर से आसक्त हुए हैं, भौतिक शरीर से अपना अभिनिवेश कर रहे हैं, अपनी पहचान कर रहे हैं, और इसी कारण से सोचते रहते हैं मुझे ये कष्ट है, मुझे वो कष्ट है। वस्तुतः सारे कष्टों का कारण यही है कि हम कृष्ण की भूल गए हैं, कृष्ण से अपने संबंध को भूले बैठे हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। तो बताइए कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य क्यों करेगा जिससे केवल उसको शोक प्राप्त हो। इसी कारण से अर्जुन यहाँ पे युद्ध करने के लिए उत्सुक नहीं है। और भी कारण वो देंगे अगले श्लोकों में, उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। हरे कृष्ण।